الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ा करते हैं, और हमारी जो निसाब की किताब है वो मआरिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब दी हुई लिखी हुई उसकी वॉल्यूम 3 है, जिसमें सूरह मायदा है और सूरह अल अनआम भी है, जो हमारी खवातीन की क्लास के अंदर चलती है पीर ही के दिन सुबह के वक्त। अगर आपके घर वाले उसमें नहीं है तो चाहिए कि उसमें उनको भी ज्वाइन करवा लें। बहरहाल, सूरह मायदा की जो आयत नंबर 27 से लेकर के 32 तक, इनका हमने तर्जुमा पढ़ लिया था पिछली क्लासों में, और खुलासे तफसीर भी मुकम्मल हो गई थी, और मारूफ मसाइल हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे पेज नंबर 111, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्लेड भी होगा उसका पोर्शन। सफर नंबर 111 पे हमने यहाँ तक आखिर तक पढ़ लिया था ना। हाँ, कि ये जो हाबील और काबील का किस्सा अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर बनी इसराइल को बयान किया, लेकिन जाहिर है कुरान मजीद में है, तो नबी अलैहिस्सलाम और आप के जो मानने वाले थे उनके वास्ते से बनी इसराइल को अल्लाह ताला ये किस्सा बयान फरमा रहे हैं। तो इसके फरमाया हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने कि इसके अलावा इसी लफ्ज में कुरान करीम के मुखातबीन को इस तरफ भी रहनुमाई करना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी महज हैं, इस लफ्ज से मुराद तो अल्लाह ताला ने फरमाया बिल हक कि वतलु अलैहिम नबा अब नई आदमा बिल हक कि आप तिलावत कीजिए उनके ऊपर, यानी अपने असहाब के ऊपर और जो बाकी लोग ऑडियंस में आपके होते हैं उनके ऊपर, आप यानी उनके सामने आप तिलावत कीजिए बनी आदम आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाकया बिल्कुल ठीक ठीक सच सच बिल हक हक के साथ। ठीक है, तो ये अल हक में उन्होंने तब ये लिखा था। इसका मतलब ये है कि जो भी तारीखी रिवायात वगैरह होती है ना, तो उनमें हक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, मिर्च मसाला उसमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, समझाने की खातिर उसको उसके लिए आप एडिशनल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सुनने वाले को बात समझ में आ जाए, वो अलग चीज है, वो जायज है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये काम है कि ऐसे बात समझाई जाए कि बंदे को समझ में भी आ जाए, लेकिन मिर्च मसाला लगाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं जो कि हुए ही नहीं थे। ठीक है, ताकि बस सुनने वाले को दिलचस्पी पैदा हो जाए। भाई, दिलचस्पी पैदा करना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। ठीक है, हमारा तो काम समझाना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है, तो हम वो काम करें ना। बाकी जो उनको दिलचस्पी होगी वो उसके ऊपर यानी ईमान लेकर के आएंगे और उसकी वजह से वो हिदायत हासिल करेंगे, ये उनका काम है करने का, और ये अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। तो हम झूठ ना बोला करें इस वजह से अगला बंदा हिदायत पर आ जाए। तो फरमाए कि इसके अलावा इसी लफ्ज में कुरान करीम के मुखातबीन को इस तरह भी रहनुमाई करना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी महज हैं और हजारों साल पहले के वाकयात बिल्कुल सच्चे और सही बयान फरमा रहे हैं, तो उसका सबब बजुज वही इलाही और नबुवत के क्या हो सकता है, क्योंकि जो इनके उलमात है ना बनी इसराइल के, तो उनको तो पता था ना कि भाई वाकया कैसे हुआ था, क्योंकि इनकी किताबों में भी तो अल्लाह ताला ने वाकयात बयान किए थे, हाबिल और काबिल के और यूसुफ अलैहिस्सलाम के और दूसरे वाकयात इनकी किताबों में तो मौजूद थे ना। तो इनको पक्का पता होता था कि कुरान मजीद में जो ये वाकयात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं ये बिल्कुल सच्चे वाकयात हैं, क्योंकि इनको अपनी किताबों से ये बात पहले से पता थी इन वाकयात के बारे में ना। तो अल्लाह ताला सूरह अनाम के अंदर जो आपके घर की खवातीन में आजकल चल रही है, तो उसमें एग्जैक्टली यही अल्फाज अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि वल्लजीना आतैनाहुमुल किताबा यअलमूना अन्नहु मुनज्जलुम मिन रब्बिका बिल हक। वहां पर भी बिल हक, माशाल्लाह मर्दों में भी बिल हक वाली आयत चल रही है और उन्हीं की औरतों में भी बिल हक वाली आयत चल रही है, ठीक है। और वो बिल हक वाला कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो अहले किताब थे इनको बिल्कुल पता था कि ये जो किताब है ना ये अल्लाह की तरफ से नाजुक शुदा किताब है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑलरेडी निशानी, यानी ये ऑलरेडी मोजजा निशानी दलील कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन लोगों को दे दी थी। जब ही तो इनके जो बाकी फरमाइशी प्रोग्राम होते थे कि हमें ये भी करके दिखाओ वो भी करके दिखाओ, तो उसको मना कर दिया कि नहीं, हम आपके फरमाइशी प्रोग्राम नहीं टेलीकास्ट करने वाले हैं, हम पहले ही आपको सारी निशानियां बता चुके हैं जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये अल्लाह की किताब ही में हो सकती, ठीक है। तो देखिए सामने ये सारी दलीलें कुरान मजीद की इन्हीं आयात के अंदर जो हम इन क्लासों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो फरमाया कि इस तमहीद के बाद इन दोनों बेटों का वाकया पुराने करीम ने यह बयान फरमाया, इज करबा कुर्बानन फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिन अलआखर, कि यानी इन दोनों ने अल्लाह ताला के लिए अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। कुर्बानी क्या चीज होती है? कुर्ब हासिल करने के लिए जो अपने पास से एक नुकसान किया जाता है, अपना नुकसान किया जाता है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसको कुर्बानी कहते हैं, कुर्बानी, ठीक है। तो करबा कुर्बानन, ठीक है, अब अपने पैसे की कुर्बानी दें या अपनी चाहत की कुर्बानी दें या किसी भी और चीज जो कि अजीज थी उसकी कुर्बानी दें, तो उससे फिर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, जब नियत अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की हो तब कोर्स, ठीक है। तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे की कबूल ना हुई, ठीक है। इसलिए उसने जो कुर्बानी करी थी वो कुर्ब हासिल करने के लिए करी नहीं थी, उसकी नीयत ही नहीं थी कुर्ब हासिल करने की, ठीक है। उसकी नीयत तो अपने आप को बड़ा दिखाने की थी, उसकी नीयत तो ये थी कि मेरा नफ्स जो चाहता है वो हो जाए। तो वो असली खुदा की का कुर्ब नहीं हासिल करना चाहता था, वो नकली खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहता था, ठीक है, कि मेरा नफ्स खुश हो जाए, अल्लाह जो खालिक कायनात है वो नहीं खुश हो जाए, बल्कि छोटा सा जो मैंने खुदा अंदर रखा हुआ है ना जिसको नफ्स कहते हैं वो खुश हो जाए। यही फर्क होता है, एक इंसान अपने नफ्स की वजह से वही अमल कर रहा है, यानी जिसको के कुर्बानी कहा जाता है वही अमल कर रहा है, लेकिन नीयत उसकी अपने फील गुड अबाउट इट, राइट, आई फील गुड अबाउट इट, यानी मेरा नफ्स फील्स गुड अबाउट इट, ये उसकी नीयत है, कोई फायदा नहीं ऐसी कुर्बानी करने का। और दूसरा शख्स वही काम कर रहा है लेकिन अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कर रहा है, वो कबूल होगी, उसका फायदा होगा उसको। तो आमाल जाहिर एतबार से सेम भी हो लेकिन नीयत जो है ना वो डिटरमिन करती है कि किसकी कबूलियत होगी किसकी कबूलियत नहीं होगी, किससे फायदा होगा किससे फायदा नहीं होगा। तो आगे फरमाया कि लफ्ज कुर्बान अरबी लुगत के एतबार से हर उस चीज को कहा जाता है जिसको किसी के कुर्ब का जरिया बनाया जाए, लुगत के एतबार से तो फिर किसी के भी कुर्ब का जरिया बनाया जाए ना, लेकिन इस्तिलाह शरीयत में, शरीयत की इस्तिलाह में उस जबीहे वगैरह को कहा जाता है जो अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के लिए किया जाए, ठीक है। यानी नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो लफ्ज कुर्बानी है ये खास जिलहज्जा की 10, 11, 12 की तारीखों में खून बहाना, खास किस्म के जानवरों का खून बहाना, मुर्गी का खून बहाना नहीं, राइट, और किसी हिरन का खून बहाना नहीं, बल्कि डोमेस्टिकेटेड मवेशी का खून बहाना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने यही सिखलाया है। ठीक है, तो इसमें से मुर्गी भी निकल गई और इसके अंदर से जो है वो हिरन और बारासिंगा वगैरह भी निकल गया, और वो और कौन कौन से होते हैं जो लोग शिकार करके खाते हैं वो भी निकल गया इसके अंदर से। ठीक है, तो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक खास किस्म के खून बहाने को कुर्बानी कहा जाता है। ठीक है, इस कुर्बानी के पेश करने का वाकया, यानी जो इन आयात में है, जो सही और कवी सनदों के साथ मनकूल है, और इब्ने कसीर ने इसको उलमाए सलफ व खलफ का मुत्तफका कौल करार दिया है, यानी ये जो वाकया जो है ना कुरान मजीद में, तो ये अल्फाज हमने पढ़ लिए, लेकिन इसकी मजीद तफसील कहां से आ रही है? वो सही और कवी सनदों के साथ मनकूल हदीसों से या रिवायात से। ठीक है, जो के जिसके ऊपर उलमाए सलफ, जो के यानी पहली तीन जनरेशन के उलमा कहलाते हैं, वो भी मुत्तफिक हैं, और उलमाए सलफ वो भी मुत्तफिक हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल मुत्तफिकन अलैह ये तफसीलात हैं हाबिल और काबिल के वाकये की। वो ये है कि जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिम सलाम दुनिया में आए और तवालदो तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ, यानी ये दोनों मियाँ बीवी के तौर पर अल्लाह ताला ने बनाए थे, फिर उनको जन्नत से जो है वो वाकया पूरा हुआ, फिर उसके बाद दुनिया में भेज दिया, तो अब जो है ना वो इनकी नस्ल आगे बढ़ी। ठीक है, जैसे औलाद होती है, तो अब अल्लाह ताला ने क्या फैसला फरमाया, हुक्म फरमाया क्या, कि हर एक हमल से उनके दो बच्चे तवाम पैदा हुए। ठीक है, यानी एक वक्त में जो है ना वो ट्विंस पैदा हुए, जैसे आजकल कभी कभी ट्विंस पैदा होते हैं ना। ठीक है, कभी जो है वो खैर ट्रिपल्स ट्रिपलेट्स भी पैदा हो जाते हैं, कभी जो है वो क्वाड्रुप्लेट्स भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है ना वो। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या मामला किया कि आदम अलैहिस्सलाम की एहलिया के घर में जब विलादत होती तो दो ही होते, ट्विंस ही होते। ठीक है, और उनमें से एक लड़का होता और एक लड़की होती। तो उस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बजुज बहन भाइयों की कोई और नहीं था, और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह जल्ला शानहू ने उस वक्त की जरूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो तो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम करार पाएगा, लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले, यानी किसी यानी उसके 1 साल के बाद या 2 साल के बाद फिर जब औलाद होगी ना, जो कि ट्विंस ही होंगे, और ट्विंस भी कैसे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। ठीक है, तो दूसरे हमल से पैदा होने वाले वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता अज़दवाज व मुनाकहत जायज होगा। ठीक है, कि ये औलाद आदम है, डायरेक्ट औलाद आदम, और वो भी डायरेक्ट औलाद आदम है, यानी माँ बाप दोनों मुश्तरक है, लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या कि निकाह जायज होगा। ठीक है, अब उसके बाद निकाह नाजायज कर दिया अल्लाह ताला ने, कि भाई बहन जिनके के माँ बाप सेम हो वो सारे के सारे भाई बहन कहलाएंगे, भाई बहन कहलाएंगे। ठीक है, और उनके अंदर दरमियान निकाह जो है वो नाजायज होगा, ये अल्लाह का हुक्म। ठीक है, और उस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या कि नहीं, माँ बाप सेम है लेकिन निकाह जायज है, और जो एक हमल में पैदा हुए उनमें निकाह जायज नहीं है, दूसरे हमल में पैदा उनमें निकाह जायज है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, इसको कहते हैं अल्लाह का हुक्म। ठीक है, अब काफिर अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता। ठीक है, वो कहता है कि नहीं, अल्लाह के हुक्म ये क्या चीज होती है। एथियस तो कहता है, जो पुराना एथियस था ना, वो कहता है कि अल्लाह तो है ही नहीं, तो उसका हुक्म कैसे कैसे हो सकता है। पुराना एथियस कहता है कि अल्लाह तो है ही नहीं, ये तो खुद ब खुद सब कुछ बन गया। ठीक है, तो हुक्म कैसा। और नया एथियस क्या कहता है, मॉडर्न एथियस, वो कहता है कि अल्लाह तो है लेकिन हुक्म शुक्म कोई नहीं है उसका। ठीक है, हुक्म शुक्म कोई नहीं है, जो तुम्हारे अकल में आए, जो तुम तजुर्बे से सीखो, बस वही करो, ठीक है ना। अल्लाह बैठा तमाशा देख रहा है, बस उसने बना दिया है, बाकी जो है वो हम खुद ही चलाएंगे, इसको खुद ही चला रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉडर्न एथियस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो दूसरे किस्म के काफिर आते हैं, जैसे ईसाई हैं, यहूदी हैं और वगैरह, ठीक है। तो अब इनका क्या है, इनके नजदीक जो है वो अल्लाह भी है और अल्लाह का हुक्म भी है, ठीक है ना। अल्लाह भी है, अल्लाह का हुक्म भी है, जिसको दीन का नाम दिया जाता है। तो ये ईसाइयत एक दीन है, यहूदियत एक दीन है, ठीक है, और दूसरे भी अदयान हैं, मजूसियत भी एक दीन है, और पुराना भी हिंदू मत भी एक दीन है। तो हिंदू मत भी क्या है, अल्लाह भी है और अल्लाह ने अहकाम भी दिए हैं, ये हिंदू मत का दीन है, हिंदू मत इसको कहते हैं। बुद्धिस्ट भी एक दीन है, ठीक है। तो अब इनके नजदीक क्या है कि अल्लाह भी है, अल्लाह का दीन भी है, लेकिन क्या वाकई वो अहकाम जिसको ये अल्लाह का हुक्म कहते हैं, क्या वो वाकई अल्लाह के दिए हुए अहकाम हैं या दरमियान में किसी ने चेंज कर दिए, ठीक है। तो इन अदियान का मसला क्या है कि दरमियान में जो अल्लाह के अहकाम चेंज हो गए, ठीक है ना। तो अब इनमें मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस कह सकते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स कह सकते हैं, कि यहूदियत में अल्लाह के अहकामात उन्होंने चेंज किए, लेकिन सारे चेंज नहीं किए, कुछ उन्होंने इंटैक्ट भी रखे, ठीक है। ईसाइयत में अल्लाह के अहकामात चेंज किए, लेकिन यहूदियत के मुकाबले में ज्यादा चेंज किए, ठीक है ना। ईसाइयत में ज्यादा खराबी आई। मजूसियत के अंदर वो अल्लाह के अहकामात चेंज किए, लेकिन ईसाइयों से भी ज्यादा चेंज किए, ठीक है ना। और उसी तरीके से हिंदू मत हो या बुद्धिज्म हो या सिख मत हो या इस तरह की जो भी दूसरे ऑर्गेनाइज रिलीजन हैं, उनमें भी अल्लाह के अहकाम चेंज किए, लेकिन ईसाइयों के मुकाबले में बहुत ज्यादा चेंज किए, ठीक है। तो अब वो जिसको अल्लाह का हुक्म कहते हैं, उनके हिसाब से जो है वो उसको करने से फायदा होता है, उसको करने से नुकसान होता है, उसको ना करने से नुकसान होता है, ठीक है। मुसलमान के नजदीक क्या चीज है कि अल्लाह भी है और अल्लाह का हुक्म भी है, ठीक है। अल्लाह भी है, अल्लाह के अहकामात भी हैं, लेकिन हमारे पास जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो तमाम अकली और नकली दलाइल से साबित शुदा अहकामात हैं कि ये तब्दील नहीं हुए, जैसे नाजिल हुए थे वैसे ही हम तक पहुंचे। और इसके ऊपर ये नहीं कि सिंस दिस इज माई रिलीजन दैट्स वाई आई थिंक सो बिकॉज आई एम बायस्ड टूवर्ड्स माई रिलीजन, ठीक है ना। मेरा एक बायस, जिस तरह हिंदू का एक बायस है उसी तरह यहूदी का एक बायस है और मजूसी का एक बायस है, उसी तरह मुसलमान का भी एक बायस है कि बिकॉज दिस इज माइन दैट इज वाई इट इज द बेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है मुसलमान के साथ, बल्कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन बायस, इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी एंड प्रूवेबल फैक्ट्स, ठीक है, कि बाकायदा लिखे हुए मौजूद हैं उस जमाने के जिस वक्त ये कुरान नाजिल हुआ था उसके बाद, और उसके अलावा और बहुत सारे दलाइल, सिर्फ ये नहीं कि लिखे हुए सफात की शक्ल में हमारे तक पहुंचे हैं, बल्कि सनद के हिसाब से भी, मशहूरी के हिसाब से भी, कि दुनिया के हर हर कोने में बिल्कुल वही कुरान मजीद और हदीस मुबारका, हत्ता के फिका की भी जो वो मुदव्वल किताबें, दुनिया के हर जगह जो है वो सेम मिलेंगी, उनमें तब्दीली नहीं है। तो ये एक और दलील कि भाई हमारे पास बिल्कुल ठीक ठीक पहुंचे जैसे नाजिल हुए थे, बीच में मैनिपुलेशन नहीं हुई है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आज के दौर के हिसाब से फिर आप लोगों ने, तो फिर वो मैथमेटिशियंस ने बाकायदा कुरान मजीद का एक मैथमेटिकल नेट सम बना लिया कि ये तो नेट सम ऐसा है कि जिसके अंदर अगर आप एक लफ्ज को भी आगे पीछे कर दें तो पूरे की पूरी कैलकुलेशन ही आउट हो जाती है, तो आप एक लफ्ज को भी आउट आगे पीछे नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स से भी प्रूवेबल हो गया, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए से भी प्रूव हो गया। ये तो आज के दौर की बात है, लेकिन उसके अलावा कितने सारे प्रूव्स हैं हमारे पास कि ये बिल्कुल सही रिलीजन है, जैसे अल्लाह के अहकामात नाजिल हुए थे वैसे ही, ठीक है। तो अब जो है ना, ये बात तो एक जमीनी बात हो गई। और फिर दूसरी बात ये कि देखें, अल्लाह का हुक्म है ना, अभी अल्लाह का हुक्म क्या है कि जिनके माँ बाप सेम हैं उनके दरमियान निकाह नहीं हो सकता, ठीक है, और उनके दरमियान औलाद वाला मामला नहीं हो सकता, नहीं करना है। हो तो सकता है, बायोलॉजिकली तो हो सकता है, लेकिन नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? कि उसका जो है ना वो असर ये होगा कि अल्लाह ताला नाराज होंगे, क्योंकि उसका हुक्म है कि नहीं करना, तो अल्लाह ताला की नाराजगी मिलेगी, ठीक है। उस जमाने में ये चीज कर सकते थे, अल्लाह ताला की नाराजगी नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद वाली जनरेशन थी उसमें अल्लाह की नाराजगी नहीं है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यह है कि भाई करो, तो जब हुक्म है तो नाराजगी नहीं है, और जब हुक्म है ना करने का तो फिर अल्लाह ताला की गजब है, नाराजगी है, सजा है, ठीक है। तो ये है हमारा दीन है इस्लाम। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा साइंटिफिक अगर फैक्ट को लेकर के आए, तो अल्लाह का हुक्म जो है ना, एक तो ये है ना कि भाई अल्लाह की नाराजगी तो भाई आपको अजाब मिलेगा, ये बात अनफॉर्चुनेटली ये बात भी हमारे दरमियान से अब खत्म होती चली जा रही है, कि अल्लाह के हुक्म का ताल्लुक है सवाब और अजाब के साथ, और बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बड़ा कंपलसरी ताल्लुक है, कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने पे सवाब और कामयाबी और खुशी और इत्मीनान, ये सब रिजल्ट होता है, ये सब रिजल्ट होता है, ये इफेक्ट क्रिएट होता है, और इसी दुनिया की जिंदगी में क्रिएट होता है, और बल्कि जल्दी से क्रिएट होता है, ठीक है, जल्द क्रिएट होता है। और जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होती है तो इसका भी एक इफेक्ट जनरेट होता है, जल्द जनरेट होता है, नाकामी की शक्ल में, बेचैनी की शक्ल में, गमी की शक्ल में, तकलीफ की शक्ल में, अजियत की शक्ल में, गुमराही की शक्ल में, इमीडिएटली एक इफेक्ट जनरेट होता है। इन लजीना यकसिबून अल इस, वो लोग, बेशक वो लोग जो गुनाह करते हैं यानी अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, सयुज्जऊना बिमा कानू यक्तरिफून, ये भी कुरान मजीद ही की आयत है, सूरह अनआम की वही, जो कि आपके घर के ख्वातीन के सामने पढ़ी जा अब अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी, ठीक है। आयत नंबर 120 क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि जो लोग गुनाह करते हैं, स सीन होता है अन करीब के लिए, ठीक है, और बहुत जल्दी से करीब, अन करीब, अन करीब वो सजा पाएंगे, बिमा कानू यक्तरिफून, जो उन्होंने किया है गुनाह। तो कुरान मजीद क्या कह रहा है कि अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी के ऊपर इफेक्ट जनरेट होता है नेगेटिव शक्ल में, ठीक है, चाहे वो किसी शक्ल में जनरेट हो लेकिन जनरेट होता है, उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, किसी को सजा किसी शक्ल में मिल रही है, किसी दूसरे को सजा उस शक्ल में नहीं मिल रही बल्कि किसी दूसरी शक्ल में मिल रही है, तीसरे को जो है वो इन दोनों शक्लों में नहीं मिल रही बल्कि तीसरी किसी शक्ल में मिल रही है, ये शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसके लिए कुरान मजीद ने जगह जगह जो है वो कौम लूत का तस्करा किया, कौम आद का तस्करा किया, कौम समूद का तस्करा किया, कौम नूह का तस्करा किया, बनी इसराइल का तस्करा किया, सबने अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करी, लेकिन किसी के ऊपर गर्क होने वाली सजा आई, किसी के ऊपर हवा का अजाब आया, किसी के ऊपर चीख का अजाब आया, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश का अजाब आया, और किसी के ऊपर बुख्त नसर के हमले का अजाब आया, कि जिसने उनके ऊपर हमला करके उनको ताख तो ताराज करके रख दिया, किसी के ऊपर जो है वो चेहरा मस्क कर देने की शक्ल में अजाब आया, किसी को जो है वो बंदर बनाने की शक्ल में अजाब आया। तो अजाब की शक्लें अल्लाह ताला इन वाकयात से हमें बता रहे हैं, शक्लें मुख्तलिफ होंगी लेकिन ये मुख्तलिफ नहीं होगा कि तुम अल्लाह का हुक्म तोड़ो और अजाब ना आए, ये नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह का हुक्म तोड़ो और अजाब ना आए, ये नहीं हो सकता। आज हम लगे हुए हैं इस मेहनत के ऊपर कि किसी तरीके से हर एक को ये बावर करा दें कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से कुछ नहीं होता, नहीं होता कुछ अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से, ये प्रूफ करने और कराने के ऊपर हम मुसर हो चुके हैं दीन का ताल्लुक अल्लाह के हुक्मों से नहीं है, अल्लाह के हुक्मों से नहीं है, बल्कि अपनी मन मर्जी से है। जिस चीज को तुम्हें अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लो, चाहे वो दीन की शक्ल की चीज क्यों ना हो, चाहे वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्यों ना हो, चाहे वो दीन के अमाल क्यों ना हो। अगर तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो तुम वो करो, और तुम्हें नहीं पसंद आ रहे ना करो। इट हैज नथिंग टू डू विद कॉन्सिक्वेंसेस, इट हैज नथिंग टू डू विद कॉन्सिक्वेंसेस। हम तुले हुए हैं कि इस चीज को जो है ना वो हम साबित करें, हर एक के सामने इसको साबित करें। लेकिन हमारी ये कोशिश जो है वो नाकाम रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत करी है, दीन को तो हम नहीं बदल सकते। हाँ, ये जरूर होता है कि हम अपने दीन से हाथ धो बैठते हैं, हम दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं इस किस्म की हरकत करने की वजह से, और फिर हमारे ऊपर जो अजाब है वो बढ़ जाता है। पहले भी इस किस्म की कोशिश करने के ऊपर अजाब था हमारे ऊपर, लेकिन जब खारिज हो जाएंगे इस तरह का कोई बात कर देने से या इसमें शामिल हो जाने से, जब खारिज हो जाएंगे तो अजाब और बढ़ जाएगा। अब हम कहते हैं कि कौम लूत की शक्ल का अजाब तो हमारे ऊपर नहीं आया, नूह की शक्ल का अजाब तो हमारे ऊपर नहीं आया, कौम समूद की शक्ल का अजाब तो हमारे ऊपर नहीं आया, या बनी इसराइल के ऊपर जो अजाब आया था वो तो हमारे ऊपर नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह इज गुड अबाउट इट, है ना, अल्लाह को कुछ नहीं फर्क पड़ा जो हमने किया। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि इट मीन्स के दिस इज फाइन, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर बिजली कड़क करके हमने हमें अभी तक जला के भस्म नहीं किया, हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश नहीं हुई, या और जो है वो हमारे मुल्क के ऊपर किसी ने अभी तक अटैक नहीं किया, या हमारे घरों को जो है वो अभी तक तोड़ा नहीं गया। तो इस वजह से इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमसे राजी है, हमसे यानी बस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये अटर बेवकूफी है, जहालत है और अंधापन है। अल्लाह का अजाब तो आपके ऊपर आ चुका है, आपको नजर नहीं आ रहा, आप उसको तस्लीम नहीं कर रहे, ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। अल्लाह के उसूल नहीं तब्दील हुए, अल्लाह के उसूल तब्दील नहीं हुए कि अजाब अब नहीं आता, 21वीं सदी में नहीं आता, नहीं आता है और आ चुका है, आता भी है और आ चुका भी है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, या अल्लाह ने आपको ढील दी हुई है, अभी अभी दिखा नहीं रहा वो आपको, और जब वो बगतन रस्सी को खींचेगा तो आपको नजर भी आ जाएगा, लेकिन फिर इट्स इट विल बी टू लेट, फिर आप जो है वो तौबा भी नहीं कर सकेंगे, माफी भी नहीं मांग सकेंगे, ठीक है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे वो एक वो है ना पागल खाने में कोई गया था, तो उसको बहुत ही एक बड़ा सुलझा हुआ बंदा नजर आया, सुलझा हुआ बंदा नजर आया, तो वो बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, तो और कह रहा था कि भाई मैं पागल नहीं हूं, इन लोगों ने ना मुझे बस खामखे यहां पे बंद कर दिया है, ठीक है, इन लोगों ने मुझे खामखे यहां पे आके बंद कर दिया है। तो ये बड़ा इंप्रेस हुआ उसकी बातों से, ये बंदा विजिटर, ठीक है। तो जा करके ना वो फिर वहां से निकला, तो पागल खाने के दरोगा के पास गया, उसने कहा कि भाई मेरी मुलाकात आपके पागल खाने में एक बंदे से हुई है, बहुत देखने में बड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है, बातें भी बड़ी अच्छी कर रहा है, और वो कह रहा है कि वो कोई पागल वागल नहीं है, बस लोगों ने उसको उठा करके पागल खाने में बंद कर दिया है। तो दरोगा साहब ने उनसे कहा कि भाई हर पागल अपने बारे में यही कहता है, हर पागल अपने आप को जो है ना वो पागल नहीं समझता है, ठीक है ना, इसी वजह से वो पागल होता है। पागल तो फिर उसको दूसरे स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिटर, दूसरे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जिसकी बुनियाद पर जो नफ्सियाती तबीब होते हैं उनके यहां स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो पागल डिक्लेयर किया जाएगा वही पागल होगा ना, उससे पूछा तो नहीं जाएगा कि भाई तुम अपने आप को पागल समझते हो कि नहीं पागल समझते हो, अगर समझते हो तो ठीक है हम तुम्हें पागल खान में एडमिट करवा देते हैं, और अगर नहीं समझते तो कोई बात नहीं, यू कैन गो अराउंड डू व्हाट एवर यू विश, ऐसा होता है क्या, ख्याल है, होता है ऐसा। उसी तरीके से मरीज का भी मामला, अगर मरीज कहे कि मैं मरीज नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर्स जो मेडिकल फील्ड के स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसको डायग्नोज किया, उसको जो है वो चेक किया, वो अगर उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मरीज निकला, तो अब जो है वो क्या डॉक्टर्स ये कहेंगे कि नहीं, सिंस यू डोंट एडमिट दैट यू आर अ पेशेंट, दैट्स व्हाई वी डिक्लेयर दैट यू आर नॉट अ पेशेंट, दैट यू आर नॉट सिक, राइट? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? ऐसे ही होता है। तो भाई उसी तरीके से अल्लाह के अजाब की भी तो स्टैंडर्ड्स है ना, वो हम खुद तो नहीं मेंटेन, हम खुद तो नहीं वो करेंगे कि जी हम अल्लाह का अजाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, वो तो अल्लाह और उसके रसूल ने जो है वो सेट किए हुए, तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक डिटरमिन किया जाएगा ना कि अल्लाह का अजाब है कि नहीं है। हम कहते हैं नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि नहीं है तो उसका मतलब है कि नहीं है, तो फिर हम में और उस पागल में क्या फर्क हुआ, और हम में उस जो है वो मरीज में क्या फर्क हुआ जो कि अपने आप को मरीज मानने के लिए तैयार नहीं है ना भाई? स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अब ये स्टैंडर्ड्स जो है ना इसी को दीन कहा जाता है। तो अब जो है ना वो क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स जो है वो अल्लाह ताला ने तो महफूज करके रखे हुए, इस वजह से इन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पे जो है वो ये फैसले किए जाते हैं। लेकिन फिर शैतान को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि स्टैंडर्ड्स तो अल्लाह की तरफ से मेंटेन हुए हैं, तो अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? अल्लाह का दीन, ठीक है ना? कि ये दीन जब तक प्रिजर्व्ड रहेगा उस वक्त तक मैं सारी इंसानियत को बेवकूफ नहीं बना सकूंगा, सारी इंसानियत को मैं गुमराह नहीं कर सकूंगा। जब तक ये दीन मौजूद है, ये स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, तो मैं सबको नहीं गुमराह कर सकूंगा। इस वजह से उसकी सारी मेहनत ये होती है कि इस इन स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो खराब करवाए, करे किसी तरीके से खराब करवाए किसी तरीके से, ये सारी की सारी उसकी मेहनत होती है, ठीक है? तो अब वो जो है वो फिर फिरते पैदा करते हैं, जो कि दीन के बिल्कुल मस्क शक्ल को जो है वो दीन कहना शुरू कर देते हैं, और वो फिर उसके लिए तमाशे करते हैं एक से एक कि भाई हमारे ही जो है ना वो मस्कशुदा जो हमने जिस चीज को हमने दीन का नाम दिया है, तुम उसको ही असल दीन समझना शुरू कर दो। वो तमाशे करते हैं फिर उसके ऊपर, सोशल मीडिया पे भी आके के तमाशे करते हैं, प्रिंट मीडिया पे भी आके तमाशे करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आके तमाशे करते हैं, मोहल्ले में भी आकर के तमाशे करते हैं, सड़कों पे भी आकर के तमाशे करते हैं कि जी हम जिसको दीन कह रहे हैं वही दीन है, हालांकि पीछे उनके पास दलील नहीं होती उसकी, ठीक है? तो ये शैतान इस तरीके से काम करता है कि भाई किसी तरीके से स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाएं, ताकि अजाब है कि नहीं है इसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रहे ही नहीं बाकी, ठीक है? और ये जो आपने लिखा कि नजर आना भी तो एक अजाब है, ये नजर आना अजाब की सबसे इंतहाई शक्ल है, एक अजाब नहीं है ये, बल्कि अजाब की सबसे इंतहाई शक्ल है कि अजाब तो है लेकिन नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि सबसे मोहलिक बीमारी वो बीमारी है जिसको कि बीमार बीमारी मानने से इनकार कर दे, वो सबसे मोहलिक बीमारी, कैंसर, हेपेटाइटिस सी, ये नहीं, बल्कि जो भी बीमारी हो बीमार मानने से इनकार कर दे कि वो बीमारी बीमारी है, ये सबसे मोहलिक बीमारी, ये याद आपका भी मामला, ठीक है? तो इस तरीके से इंसान को ढील मिलती है और फिर वो और गुनाह करता है और अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करता है और उसको अपने ऊपर मजीद बड़े अजाब को वाजिब करता है, ठीक है? तो अल्लाह का हुक्म जो है ना वो जब जैसा होगा, अच्छा अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं ना, तो वो हुक्म अब ये वापस आ रहे हैं आबिल काबिल वाले वाक्य के ऊपर, ठीक है? तो देखें, जिन लोगों को थोड़ा भी इल्म है वो जानते हैं कि अगर बहन भाई के दरमियान निकाह हो जाए, ठीक है, तो इससे जो औलाद होगी ना उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, और बड़े मेजर किस्म के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और सिर्फ बहन भाई नहीं बल्कि इवन दूसरे भी महरम रिश्तेदार हैं, तो उनके दरमियान भी अगर निकाह हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रिजल्ट होते हैं। व्हाट अबाउट हाबील एंड काबील का जमाना? उस जमाने में भी सेम मां बाप के जो औलादें होती थी उनके दरमियान निकाह होता था, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स रिजल्ट होते थे? नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स रिजल्ट नहीं होते थे। तो कहने का मकसद किया कि जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं ना, तो वो हुक्म जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है उस टर्फ को भी ऐसा बनाते हैं कि उस हुक्म के मानने में उसका फायदा होता है और ना मानने में नुकसान होता है। ये नहीं होता कि हुक्म को मानने में उसका नुकसान हो जाए, ठीक है, कि भाई ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान अगर निकाह हो गया तो अब उसकी वजह से जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की जो अल्लाह ताला ने जीन्स ऐसी बनाई है कि जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्ट होगा, तो अब हाबील और काबील वगैरह के जो औलादें थी तो उनके अंदर भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा था। नहीं, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ हुक्म नहीं बनाए, सादा सा इसका जवाब क्या है कि अल्लाह सिर्फ हुक्म नहीं बनाता बल्कि अल्लाह ताला हमारा एनाटॉमी भी अल्लाह ही नहीं बनाई है, राइट, हमारा जिस्म भी अल्लाह नहीं बनाया है, हमारे जीन्स भी अल्लाह ही ने बनाए हैं, है ना, हमारा एक एक टिश्यू, एक एक सेल, और उससे भी कम नीचे चले जाएं, हर हर चीज अल्लाह ही ने बनाई है। तो जब अल्लाह ताला हुक्म बनाते हैं तो उसी के मुताबिक अल्लाह ताला फिर टर्फ भी बनाते हैं जिसके ऊपर उस हुक्म ने अप्लाई होना है, और जब अल्लाह ताला हुक्म को चेंज करते हैं तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला टर्फ टर्फ समझते हैं ना, वो पिच जिसके ऊपर आप क्रिकेट खेलते हैं या वो ग्राउंड जिसके ऊपर आप फुटबॉल खेलते हैं, उसको टर्फ कहा जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना वो अल्लाह के हुक्मों की टर्फ है, ठीक है, या ह्यूमन मुआशरा जो कि ह्यूमन बीइंग से मिलकर के बनता है वो अल्लाह के हुक्मों की टर्फ है, वो मैदान है अल्लाह के हुक्मों का। तो अल्लाह ताला सिर्फ हुक्म नहीं बनाते, अल्लाह ताला उसके मुताबिक मैदान भी बनाते हैं और मैदान में भी तब्दीली लाते हैं जब हुक्म में तब्दीली लाते, ठीक है। अब ये उसूल अगर हमें समझ में आ गया तो आज जो हम अल्लाह के हुक्म को मुसीबत समझ के बैठे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म को जाए ना ये समझ के बैठे हुए हैं कि नहीं हमारे लिए दिस इज टू मच, ओ अल्लाह के बंदे तुम जब अल्लाह को खालिक मालिक मानते हो तो ये कॉमन सेंस तुम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो कि जब अल्लाह तुम्हारा खालिक मालिक राजिक है तो उसने तुम्हारी टर्फ भी जो है वो उसके हिसाब से ही बनाई है जो उसने हुक्म बनाया है। यहां हमारा कॉमन सेंस जो है ना वो बिल्कुल फेल हो जाता है जाकर के, और हमारी नफसानियत और शहवानियत जो है ना वो गालिब आ जाती है, या सही मानों में कहा जाए तो हमारी बदअकली गालिब आ जाती है, हमारी अकल की खराबी गालिब आ जाती है यहां पर। जब भी वो अंग्रेजी का मुहावरा मशहूर है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, है ना, अगर कॉमन सेंस ही कॉमन हो जाए ना हमारे, यानी हम अकल के नाखून लेना शुरू कर दें तो हम अल्लाह के हुक्मों को कभी भी मुश्किल नहीं समझेंगे, कभी भी बुरा नहीं समझेंगे। तो हाबील और काबील के जमाने में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था, तो भाई ह्यूमन बॉडी को भी उसके मुताबिक बनाया था, ठीक है। और यही चीज हत्ता के ख्वातीन की क्लास में तो यहां तक बात हुई थी कि 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया, तो इसका मतलब क्या था कि 5 हिजरी से पहले मेन एंड वेमेन कुड हैंडल ईच अदर, पर्दे के बगैर भी दे कुड हैंडल ईच अदर, उनमें वो मसले पैदा नहीं होते थे मसले पैदा। अगर उससे पहले भी मसले पैदा हो रहे होते कि मर्द और औरत के दरमियान अगर इख्तलात होगा तो लाजिमन शैतान के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो अल्लाह ताला का हुक्म पर्दे का 5 हिजरी से पहले आ जाना था, लेकिन जब 5 हिजरी में अल्लाह का हुक्म पर्दे का आया है तो अल्लाह ताला ने सिर्फ हुक्म नहीं चेंज किया कि पहले पर्दा नहीं था अब पर्दा फर्ज हो गया, नहीं, अल्लाह ताला ने इंसानों की वो टर्फ को भी चेंज कर दिया, उनके मिजाज को भी चेंज कर दिया, उनके जो के ऊपर जो शैतान का अमल दखल था उसको भी अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया। सिर्फ हुक्म चेंज नहीं किया कि पहले औरत मर्द जो है ना वो चेहरा भी देखते थे एक दूसरे का और एक दूसरे के साथ बिला तकल्लुफ जो है वो बातचीत बातचीत भी कर लिया करते थे, और अब जो है वो बातचीत करना बंद हो गया और चेहरे का पर्दा भी वाजिब हो गया, और जो है वो बड़ी चादर का लेकर के बाहर निकलना ये भी वाजिब हो गया, और बंदे वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। नहीं, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि पहले पिछले बंदों को पहले मारे और फिर उसके बाद नए बंदे पैदा करें, कि जो कि अब जो है ना वो उनके लिए पर्दे का हुक्म जरूरी है, नहीं, उसी लाइव लाइव मोड में, जिसको कहता ना वो सॉफ्टवेयर वाले क्या कहते हैं उसको, रन टाइम में, रन टाइम में जो है ना वो अल्लाह ताला चेंजेस देकर के आते हैं। क्या मुश्किल है अल्लाह के लिए काम, ठीक है। अच्छा, पहले भी गुनाह होते थे मर्दों औरतों के दरमियान, वो बगैर निकाह वाला गुनाह पहले भी होता था, लेकिन वो एक्सेप्शन होती थी, वो एक्सेप्शन कहलाएगी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से पर्दे का हुक्म आया ही नहीं था उससे पहले। और जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया तो अब देर इज नो एक्सेप्शन, देर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। हाँ, देर इज नो एक्सेप्शन का मतलब ये कहलाया जाएगा कि अब जो है ना वो खराबी जो है वो रूल है और बचना एक्सेप्शन है। पहले बचना वॉज रूल विदाउट पर्दा, बचना रूल था और गुनाह में मुब्तला हो जाना एक्सेप्शन था, और जब पर्दे का हुक्म आ गया तो अब बचना एक्सेप्शन होगा लेकिन गुनाह में मुब्तला हो जाना ये रूल होगा। क्या ख्याल है आपका, समझ में आते हैं ईमान किस चीज को कहते हैं, समझ में आते हैं कि ईमान किस चीज को कहते हैं, एतमाद को कहते हैं, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह के हुक्मों पर एतमाद, अल्लाह के नबी की रिसालत पर एतमाद, इसको कहते हैं। ये नहीं कि क्या मुसीबत है, ये भी टेंशन है और ये भी हुक्म है और ये भी नहीं कर सकते और वो भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हैंडल दिस, इसको ईमान नहीं कहते, ठीक है। और ये तो बेस है, ये तो बुनियादी ईमान है, बाकी जो कमाले ईमान है ये तो इसके ऊपर बिल्ड होता है, वो तो इसके ऊपर बिल्ड होता है। अगर बुनियाद है तो उसके ऊपर कमाले ईमान बिल्ड होगा, बुनियाद ही नहीं है, हम कौन से कमाले ईमान को बिल्ड करने की कोशिशें कर रहे हैं एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ पढ़ करके, और एक्स्ट्रा जो है वो पता नहीं क्या और क्या क्या कर करके, बेस ही नहीं है, अल्लाह के बुनियादी अहकाम के ऊपर एतमाद नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आगे चलते हैं कि जिन, लेकिन हुआ ये कि पहले लड़के काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो हसीन जमीन थी, और दूसरे लड़के हबील के साथ पैदा होने वाली लड़की बदशकल थी। जब निकाह का वक्त आया तो हसबे दाबता हाबील के साथ पैदा होने वाली बदशकल लड़की काबिल के हिस्से में आई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इस पर काबिल नाराज होकर हाबील का दुश्मन हो गया और इस पर इसरार करने लगा कि मेरे साथ जो लड़की पैदा हुई है वही मेरे निकाह में दी जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरी कायदे के मुआफिक उसको कबूल नहीं फरमाया और हाबील और काबिल के दरमियान रफे इख्तिलाफ के लिए ये सूरत तजवीज फरमाई कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी ये लड़की उसी को दे दी जाएगी, ठीक है ना। यानी बस वो रफे इख्तिलाफ के लिए, ठीक है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को तो कोई शक नहीं था कि जो अल्लाह का हुक्म है वही गालिब होने वाला है। तो अब वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नबी कोई काम कर भी नहीं सकता, तो अल्लाह की तरफ से इनको इल्हाम हुआ या वही नाजिल हुई कि भाई इनको कहो कि करें कुर्बानी, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया, वरना तो ये तो अब हमारे लिए ये चीज जायज नहीं है कि अल्लाह का हुक्म पता हो और फिर हम जो है ना वो कुर्बानी के जरिए से डिसाइड करें कि जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह का हुक्म पता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन कह रहे हैं कि हम कुर्बानी करके देखते हैं, जिसकी कुर्बानी कामयाब वो कबूल हो गई तो उसके हक में फैसला दे देंगे, और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसके खिलाफ फैसला दे देंगे, ठीक है। ये हमारे लिए जायज नहीं है। अच्छा, हम कुर्बानी कबूल होना ना कबूल होना तो हमें पता भी नहीं चल सकता, उस जमाने में तो आग आती थी ना, अब हमारे जमाने में कहां से आग आएगी। हम ये गलती फिर जो है ना वो कुर्बानी करके नहीं करते, हम किस तरह से करते हैं ये आप बता दें, हम ये गलती किस शक्ल में करते हैं कि जब अल्लाह के हुक्म का पता होता है और हम एक काम करते हैं फिर भी, वो क्या करते हैं, यहां जवाब देना जो सबको। म्यूट कहां से हो गया, सवाल तक तो है ना, हम इस्तखारा करते हैं फतवा नहीं पूछते, फतवा पूछने का मतलब यह है कि आप अल्लाह का हुक्म मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं था। यह मसला कोई थोड़ी है, इस्तिखारा करना मसला है, ठीक है। इस्तिखारा करने का मतलब यह हुआ कि आप अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहे हैं, जैसे कि वो फौजी अफसर ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के रसूल होने के ऊपर इस्तिखारा करने की हामी भर ली थी, वो उधर ही काफिर हो गया, उसी वक्त वो काफिर हो गया। वो फौजी अफसर का वाकया पढ़ा है ना, ये सुना है ना, है कि वो कादियानियों ने उसे कहा कि चलो तुम ऐसा करो, इस्तिखारा कर लो कि गुलाम अहमद जो था ना वो अल्लाह का रसूल था कि नहीं था। उसने कहा चलो मैं अल्लाह से पूछ लेता हूँ, इस्तिखारा करना मतलब होता है अल्लाह से पूछना, तो चलो मैं अल्लाह से पूछ लेता हूँ। वो बंदा उसी वक्त काफिर हो गया, ठीक है ना। तो ये अल्लाह के अहकाम जो है ना, और अल्लाह की आयात, नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, इसके ऊपर इस्तखारा करेंगे तो ईमान नहीं बचेगा बिल्कुल भी। बहरहाल तो भाई अल्लाह के हुक्म जो है ना, जिसके ऊपर थोड़ी बातें आप लोगों ने सुनी, बस ये आजिस बात करके बार बार कर रहे हैं आजकल, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आप सुन भी रहे होंगे, उम्मीद है कि समझ भी रहे होंगे, लेकिन फिर से कि भाई असल में जो दीन है ना, उसकी असल जो है वो अल्लाह के अहकाम है, ठीक है ना। अगर अल्लाह के अहकाम हैं, यानी उनकी अहमियत है, उनके ऊपर ईमान है, और उसके बाद अमल की कोशिश है, इखलास के साथ अल्लाह के हुक्मों पर अमल की कोशिश है, ये तीन चीजें, ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म मौजूद हैं, अल्लाह के हुक्मों पर ईमान है यानी एतमाद है कि इन्हीं को करने से पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट होगा और ना करने से नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होगा, इसको अल्लाह के हुक्म पर एतमाद कहते हैं। एक होता है ना, अल्लाह का हुक्म तो है लेकिन इफेक्ट कोई जनरेट नहीं होने वाला, इफेक्ट तो जनरेट होगा मेरी तदबीर से, इफेक्ट तो जनरेट होगा मेरे मेहनत से, इफेक्ट तो जनरेट होगा मेरे ताल्लुकात से, इफेक्ट तो जनरेट होगा मेरे अकलमंदी से, मेरी प्लानिंग से। बाकी अल्लाह के हुक्म जो है ना, वो तो मौलवी साहब के राग अलापने के लिए है ना, वो तो इज्तिमा में सुनने सुनाने के लिए है, लेकिन इफेक्ट जनरेट नहीं करना उन्होंने। हाँ वहां पे तकरार जरूर कर लेते हैं हम, नक्शबंदी इज्तिमा में, तबलीगी इज्तिमा में, चिश्ती इज्तिमा में जाकर के उसकी, लेकिन उसका कोई ताल्लुक इफेक्ट के साथ नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है अल्लाह के हुक्मों पर एतमाद, ये नहीं है अल्लाह के हुक्मों पर एतमाद, ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्मों पर एतमाद है, ठीक है, और फिर अमल करने की आप कोशिश कर रहे हैं इखलास के साथ, फिर उसके ऊपर जो बाकी चीजें हैं ना, जिक्र अस्कार, ठीक है, या जो है वो और सेलिब्रेशंस हो, ठीक है, या जो है वो सिंबॉलिज्म हो, ठीक है, इस्लामिक सिंबल्स हो, इस्लामिक वो हिस्ट्री हो, और उनकी जो है वो यादगारें हो और याददाश्तें हो, ये सब ठीक है अल्लाह के हुक्मों के साथ। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्मों को जो है वो नहीं है जी एतमाद, ना उससे कोई इफेक्ट होना है, बल्कि सारी मेहनत क्या है, यादगारों के ऊपर मेहनत हो रही है, सिंबोलिज्म के ऊपर मेहनत हो रही है, और इवेंट्स के ऊपर मेहनत हो रही है, ठीक है, और जो है कॉन्फ्रेंसों के ऊपर मेहनत हो रही है, हत्ता के पढ़ने पढ़ाने के ऊपर भी मेहनत हो रही है, हत्ता के जिक्र अस्कार के ऊपर भी मेहनत हो रही है, तो ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है, बल्कि ये दजल है, ये फरेब है, ये धोखा है, ठीक है। इसी वजह से हमारे मशायख के यहाँ बड़ी मशहूर है ये बात कि शरीयत असल है, तरीकत शरीयत की लौंडी है, शरीयत की स्लेव है, क्योंकि वो मोनस वर्ड है ना, इस वजह से लौंडी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। शरीयत तरीकत की लौंडी है, सॉरी, तरीकत शरीयत की लौंडी है, शरीयत तरीकत की लौंडी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि जी माशाल्लाह बड़ा जो है ना वो सो कॉल्ड इस्लामी हुकूमत भी आ गई है, और इस्लाम इस्लाम जो है वो किया चला जा रहा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म ना तो नाफिज किए जा रहे हैं, ना उनको जो है वो समझा जा रहा है कि भी हमारी कामयाबी की वजह अल्लाह के हुक्म है और हमारी नाकामी और मुसीबत और इसकी वजह अल्लाह के हुक्म का तोड़ना है, अगर ये कॉन्सेप्ट दिमागों में नहीं है, जुबानों पे नहीं है, तो लंबी लंबी दाढ़ियां हो या ऊंची ऊंची पगड़ियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस्लामी हुकूमत नहीं है, हत्ता कि ये शख्सियत, ये इस्लामी शख्सियत नहीं है, ठीक है। और ये जो ये बात क्यों बार बार की जा रही है, क्योंकि फितने दज्जाल में यही हो रहा है और ये मजीद बढ़ेगा, ये मजीद इंटेंसिफाई होगा कि सिंबोलिज्म और बाकी इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड इवन स्टडीज, इवन पढ़ना पढ़ाना, कुरान हदीस का पढ़ना पढ़ाना, अरबी जुबान का पढ़ना पढ़ाना, फिका का पढ़ना पढ़ाना, वो सब कुछ होगा अल्लाह के हुक्म की अहमियत और उसका जो इफेक्ट है वो जो वो नहीं। और ये हो रहा है दुनिया के अंदर, ये हो रहा है पूरी दुनिया में, बल्कि हो चुका है, चंद जगह रह गई हैं अभी इसके असर से, और उनको भी खराब करने की भरपूर मेहनत हो रही है, भरपूर मेहनत हो रही है। और यही फितने दज्जाल है, यही फितने दज्जाल। अल्लाह ताला बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।